रेडियो मानवरश्रम 107.8 पर आप अपनी होस्ट आंचल के साथ और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस अंकिता शुक्ला हु इज अ फैशन डिजाइनर एंड सेंटर हेड ऑफ वुमेन पॉलिटेक्निक बाय प्रोफेशन। और आज हम बात करेंगे चेतन भगत की वन ऑफ द फेमस बुक वन नाइट एट द कॉल सेंटर विच मेक एन इम्पैक्ट एंड प्लेस फॉर हिम। द वर्थ ऑफ द बुक इज टू बी मेजर्ड बाय वॉट यू कैन कैरी फ्रॉम इट। सो लेट्स सी वॉट वी कैन कैरी फ्रॉम द बुक वन नाइट एट द कॉल सेंटर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
शुक्रिया।
Ma'am, before we begin with book One Night at the Call Center, tell me something about the author Chetan Bhagat.
Okay, he is a very realistic writer. I must tell you that. Pehla, dusra ek IIT IIM Ahmedabad student pass out graduate. लाइफ में इससे बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बाय प्रोफेशन बहुत ही अच्छी पोस्ट पर
बनेंगे,
इंजीनियर बनेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनेंगे। मैंने इनको पढ़ने के बाद में ये रियलाइज किया कि 11 साल की मशक्कत के बाद में जरूरी नहीं है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ही बनना है
जी,
आप एक ऑथर भी बन सकते हैं। एंड ही बेसिकली इज अ वेरी रियलिस्टिक राइटर। अपनी लाइफ से इन्होंने ज्यादा कभी एक्सपेक्ट करा नहीं। एंड खुशकिस्मती है शायद इनकी कि इनके पास में दो ट्विन्स हैं, एक का नाम ईशान है और एक का नाम श्याम है, जिसके बारे में श्याम के कैरेक्टर के बारे में आज हम बात भी करेंगे। एंड इनका जो इंटरेस्ट है दैट इज इन स्क्रीन प्लेइंग एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल। तो हर किताब के अंदर आपको इनकी, क्योंकि इन्होंने अभी तक चार किताबें लिखी हैं, चारों किताबों के बारे में हम आज के बाद में भी बात करेंगे शायद।
आज हम एक ही बुक के बारे में बात करेंगे, वन नाइट एट द कॉल सेंटर।
पहली किताब इनकी 5.1
जी,
दूसरी किताब इनकी वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, तीसरी किताब इनकी 3 Mistakes ऑफ माई लाइफ और चौथी किताब इनकी 2 States द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। हर किताब से इन्होंने हमेशा भगवान को लिंक करा है। हर किताब से इनका एक ना एक मैसेज जरूर रहेगा। एंड आपको सिर्फ वो मैसेज समझना है which you can actually apply in your basic life. That's it.
Okay. The one common point in all the 4 books is that इन्होंने कहीं ना कहीं भगवान से अपनी बुक को लिंक किया गया।
हाँ, एक स्पिरिचुअलिटी मैसेज जरूर है हर किसी बुक किताब के अंदर।
Okay. So ma'am, what are your views, जबकि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं चेतन भगत की, the 4 books अभी तक आई हैं और आपने चारों पढ़ी हैं, so what are your views and opinion on the style of writing of चेतन भगत?
जैसे मैंने आपको बताया कि he's a very realistic writer. आप कभी भी कोई इनकी कोई भी एक किताब उठाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको किसी पहली किताब से ही शुरू करना, आप कोई भी एक किताब उठाएंगे इनकी चारों किताबों में, ये हमेशा जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, जिसको हमेशा ये आय का रूप देते हैं, मैं का रूप देते हैं, आपको लगेगा कि ये सिचुएशन आप ही के साथ हो रही है।
ओके।
जैसे कि मैंने बोला रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक का सिंपल शायद अर्थ ये रहेगा कि हाँ, जो चीज आपके साथ घट चुकी हो या आपके साथ घटने वाली हो या आप उस सिचुएशन के अंदर हो। तो इनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत रियलिस्टिक है विच क्रिएट्स एन इंटरेस्ट।
मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि वो नॉवल जो है आपके लिए लिखी गई है, वो आप ही करेक्टर हैं, अपने आप को करेक्टर के साथ आप लिंक कर पाते हैं।
बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे आप ही उस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। अब आपका एक क्रेज हो जाता है इस बुक को पढ़ते पढ़ते कि अगर आप इस सिचुएशन के अंदर फंसे हैं तो आप अगला स्टेप क्या करना चाहोगे। तो आप ये ऑन द गो आप ये किताब पढ़ते ही जाएंगे। इट इज लाइक इफ यू पिक दिस बुक एट वन टाइम यू डोंट वांट टू ड्रॉप इट।
ओके, वन गो में मतलब होता है कि एक बार बस एक बार शुरू करिए तो पूरी
पढ़ के छोड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कितनी रातें निकाली हैं मुझे पता है। मैंने रात को शायद टॉर्च भी जला के बेड के अंदर छुप के भी ये किताब पढ़ी है। तो बिल्कुल, इट इज वन काइंड ऑफ अ बुक।
ओके मैम, हाउ कम यू पिक्ड अप दिस बुक वन नाइट एट द कॉल सेंटर?
एक्चुअली मैं पहले आंचल आपको ये बताऊंगी कि आई एम नॉट वन ऑफ द क्रेजी रीडर्स एंड आई डोंट पिक बुक्स बिकॉज कि जी हाँ मुझे पढ़नी है किताब एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने चेतन भगत एक्सीडेंटली पढ़ा था। मैं एक्चुअली पूना ट्रैवल कर रही थी, अपने डैड के पास जा रही थी एंड मेरा सफ़र काफ़ी लंबा था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। आई सेड कि बिकॉज एक वो है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाना चाहिए, दैट वॉज द इशू। तो मैंने इनकी स्टैंड से बुक ली एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। एंड बिलीव मी, बाय द टाइम जब तक ये ख़त्म नहीं हुई, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू द नेक्स्ट थिंग। मैं अगर एक पोजिशन में बैठी हूँ एंड इफ आई एम रीडिंग इट, तो आई वॉन्टेड टू कीप ऑन रीडिंग इट। आई वॉन्टेड टू फिनिश इट ऑफ बिकॉज आई डेंट वॉन्ट कि चलो अब पढ़ ली, अब 4 दिन बाद समय मिलेगा फिर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं था। तो बस यही एक छोटा सा रहा कि मैंने इनको एक्सीडेंटली पिक करा और इनको पढ़ा।
किस चीज़ के अराउंड पूरी स्टोरी जो है, पूरे कैरेक्टर्स है, रिवॉल्व हो रहे हैं?
एक्चुअली मैं इसमें आंचल आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जब स्टोरी, जैसा चेतन भगत बताते हैं कि ये शायद ट्रैवल कर रहे थे कानपुर से दिल्ली, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो इन्हें एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है उस ट्रेन में। तो इन्होंने ये अपनी किताब के पहले 2-3 पन्नों में ही ये बताया है कि हुआ क्या था इनके साथ में। इनके साथ में हुआ ये है कि ये ट्रैवल कर रहे थे कानपुर से दिल्ली एंड कहते हैं कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जर्नीज ऑफ लाइफ थी. उसके दो कारण हैं. पहला कहते हैं कि उन्हें उनकी दूसरी किताब मिली, स्टोरी मिली उसकी, और दूसरा ही वॉज वेरी 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 हैप्पी कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप एम्प्टी कंपार्टमेंट में बैठे हो और एक खूबसूरत लड़की आपके सामने बैठी हो. तो इस हिसाब से ये किताब है एंड वो लड़की उनसे ये शर्त रखती है कि मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी एक शर्त पर कि आप उसे अपनी किताब बनाएंगे. तो चेतन भगत पूछते हैं कि ऐसा क्या है इस किताब के अंदर जो मैं, एक क्यूरियोसिटी लेवल उनका उठता है. तो शी वेरी क्लियरली सेज कि ठीक है आई विल टेल यू द स्टोरी बट इफ यू आर सीरियस देन ओनली आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस.
ओके, इफ यू प्रॉमिस दैट यू विल मेक अनदर बुक.
यस. तो स्टोरी शुरू होती है, एक रात है, थंडरिंग रात है, बारिश हो रही है, छह लोगों की जिंदगी के आसपास जो हो रहा है दैट इज मेंशनड. इसके बाद में ये क्या सिचुएशंस उठती हैं, क्या होता है, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. And I must say that this book will give you a spiritual message which will tell you that this book actually revolves around a call from God at that time. भगवान इन छह बंदों को एक फोन कॉल करते हैं और फोन कॉल में उनकी जो दिक्कतें हैं दिमाग के अंदर या दिल के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं राइट, उसको उसके आंसर्स उन्हीं से उनके आंसर्स दिलाते हैं. भगवान उनके सामने फोन करते हैं और उनको बताते हैं कि मैं भगवान हूँ और आपकी जो भी दिक्कतें हैं आप बोलिए और आंसर्स भी खुद ही लोग देते हैं. Because they knew the answers.
Because they knew the answers. क्योंकि वही है कि कहीं ना कहीं तुम जिस दुविधा में हो, जिस प्रॉब्लम में हो, उसके आंसर भी तुम्हें खुद पता होते हैं. बस you need to find out that.
Yes, you actually have to listen to what is there in your heart.
Exactly. आपने बात की थी कि इनको गॉड से कॉल आता है, तो डू यू रियली फाइंड कि रियली जो है कोई भगवान से कॉल आया होगा, कोई गॉड से कॉल आया होगा?
आंचल मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि जैसे कि पहले भी कई बार हम ये बात कर चुके हैं कि क्या भगवान होता है.
Exactly.
हर कोई पूछता है कि क्या सच में भगवान होता है. तो
तुमने कभी देखा तो है नहीं, तो मैं हाउ कैन यू बिलीव दैट गॉड.
एक्चुअली इसके अंदर भी यही चीज पूछी जाती है. जब उनको कॉल आता है कि तुम भगवान हो तो प्रूव करो, तो भगवान उनसे बहुत सिंपल पूछते हैं मैं क्या करूँ, मैं आपका जो मोबाइल है उसको हवा में उड़ाऊँ, बारिश करवा दूँ, या कुछ थंडर्स करवा दूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको विश्वास हो कि मैं भगवान हूँ. बट आंचल ये चीज़ बहुत प्योरली है और बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि भगवान आपके अंदर समाए हुए हैं एंड टाइम टू टाइम वो आपको ना ब्लिंक करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि मैं हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज वेरी क्लियरली लिसन टू योर सेल्फ, सिट इन अ पीसफुल एरिया, डोंट लिसन टू एनीबडी, स्विच ऑफ योर मोबाइल, स्विच ऑफ योर टीवी, स्विच ऑफ योर म्यूजिक सिस्टम, जस्ट सिट फॉर 15 मिनट्स, क्लोज योर आइज एंड टॉक टू योर सेल्फ, यू विल गेट द आंसर्स. एंड एक्चुअली आई फील अगर आप अपने आप को सुनो तो वो शायद भगवान की आवाज़ है.
जी. Okay, ma'am. Since you have read this book, so how many characters are there?
Okay, if we talk about characters, ये जो story है ये छः बंदों के आसपास revolve होती है and छः बंदों के अगर हम नाम ले लें इसमें तो हर बंदा जो है वो आपको एक interesting character में ही मिलेगा. क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि कितने बंदों के आसपास है, कितने बंदे हैं इस किताब के अंदर, तो इसके अंदर छः बंदे हैं. पहला है वरुण, दूसरा श्याम, तीसरा एक इनके मिलिट्री अंकल हैं, चौथा तीन फीमेल कैरेक्टर्स हैं प्रियंका, ईशा एंड राधिका. एंड हर एक की अपनी एक स्टोरी है, हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम है जो इस किताब के अंदर है और हर एक के साथ में आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं था, अरे ये तो मैं हूँ, अरे ये तो मेरा दोस्त है इस सिचुएशन के अंदर. तो ये जो इस किताब के अंदर स्टोरी है बहुत रियलिस्टिक लाइफ के आधार है इसका एंड ऑब्वियस है कि आपको लगेगा कि यस यू आर एक्चुअली रिलेटिंग इट टू योरसेल्फ.
देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो हर किसी की लाइफ में बहुत कॉमन है.
बिल्कुल.
कभी ना कभी थी, आज नहीं तो कल थी, या तुम्हारे रिलेटिव के साथ हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया. अंकिता, आई वॉन्ट यू टू टेल समथिंग अबाउट ईच एंड एवरी कैरेक्टर, लाइक लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले. सो टेल मी समथिंग अबाउट श्याम.
ओके, श्याम इज एक्चुअली इन लव विद प्रियंका एंड ही हैज अ टेंडेंसी कि वो लाइफ के अंदर पहले पैसे कमाना चाहता है, उसके बाद में सेटल होना चाहता है, उसको लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है.
ओके,
तो उसे लगता है कि अभी अगर वो प्रियंका से शादी कर लेगा या उसको कमिट कर देगा तो ही विल हैव अ प्रॉब्लम इन अर्निंग मोर मनी, क्योंकि उसकी जो जिंदगी है वो पैसे के आसपास घूमती है, तो उसको लगता है कि उसे पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है.
ही इज मोर मनी माइंडेड.
यस, ही इज अ मोर मनी माइंडेड पर्सन. उसको लगता है पैसा जरूरी है, अगर आप लाइफ में कोई भी चीज एंजॉय करना चाहते हो तो आपको पैसा जरूरी है. तो ही इज रनिंग आफ्टर मनी. वरुण एक्चुअली इज बेसिकली नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल सेंटर जॉब. ही बेसिकली वॉन्ट्स टू बी अ जर्नलिस्ट, बट उसको भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसको पैसे चाहिए सो दैट ही कैन एक्चुअली गो फॉर जर्नलिज्म. उसके कीन इंटरेस्ट हैं बाइक्स और जर्नलिज्म, ये उसके दो बहुत मेन इंटरेस्ट हैं. ईशा बेसिकली कम्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड शी, जो स्मॉल टाउन गर्ल्स के अंदर एक कार्विंग होती है कि आई शुड मेक बिग
नेम.
यस, नेम एंड फेम. और वो कैसा होता है वो सबको पता है. 90% ऑफ द गर्ल्स टुडे ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ टीवी एक्टर और अ मॉडल और समथिंग. तो ईशा इज कार्विंग टू बिकम अ सुपर मॉडल एंड शी इज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल. शी इज बेसिकली अ स्मॉल टाउन गर्ल. राधिका बेचारी बहुत पतिव्रता पत्नी है.
Okay.
उसकी लाइफ जो है वो अपने पति के आसपास बहुत ट्रैवल करती है. Okay. बहुत घूमती है. 3 साल का अफेयर रह चुका है उसका कॉलेज के अंदर. उसके बाद में उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करी होती है अनुज. Okay. अनुज के साथ में. बट अनुज एज अ कैरेक्टर इज नॉट एट ऑल डिजर्विंग राधिका, बिकॉज उसकी राधिका बेसिकली एक, जिसको कहते हैं ना कि घर में एक अकेला बच्चा, बहुत पैम्पर्ड बच्चा होता है. राधिका वो होती है. एंड व्हेन शी इज एक्चुअली स्टेप्स इनटू अनुज के घर में या फैमिली, उसको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बट स्टिल शी फाइट्स विद देम ओनली फॉर हर हस्बैंड. और इसीलिए कि उसकी मदर खुश रहे और उसकी अनुज की मदर को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अनुज की मदर को वो पसंद ही नहीं आती है. एंड मिलिट्री अंकल, क्योंकि नाम जस्टिफाई करता है कि वो मिलिट्री बैकग्राउंड से होंगे. अपने बेटे और बहू के साथ में रहते थे अमेरिका, और वहाँ पे उनका एक ग्रैंडसन भी है. और बहू की कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आई, पार्टी करना, नौकरी करना, जिसके साथ में वो नहीं कोप अप कर पाए, तो वो उनको छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं. आ तो जाते हैं लेकिन बहुत मिस करते हैं. एंड ही इज एक्चुअली अफ्रेड टू से दैट येस ही डिड रॉन्ग, ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन, बट ही डजंट वॉन्ट टू से इवन. एंड इसके बाद में एक ही कैरेक्टर रह जाता है, तो प्रियंका है, जो शाम की गर्लफ्रेंड है एज आईव टोल्ड यू. और वो शाम से प्यार करती है, शाम को बताती है कि वो शाम से प्यार करती है. बट शाम का मैंने बताया कि प्रॉब्लम है कि उसको पैसा पहले चाहिए ताकि वो हर चीज़ लाइफ की इंजॉय कर सके, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो प्रियंका को पसंद भी करता है या प्यार भी करता है, उसे शादी भी करना चाहता है, तो उसे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होना देना चाहता.
Exactly.
तो इसीलिए उसे लगता है कि पैसा कमाना पहले इंपॉर्टेंट है. एंड जो शाम है और जो प्रियंका का रिलेशनशिप है वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है. मतलब सबको पता है उस कॉलेज के अंदर कि आज इनका झगड़ा हुआ है. yeah. आज इनकी कट्टी हुई है और आज इनकी पक्की हो जाएगी.
okay.
तो एक अच्छा कैरेक्टर है ये प्रियंका का. प्रियंका का कैरेक्टर में एक प्रॉब्लम है कि प्रियंका की जो मदर है, क्योंकि एक सिंगल मदर है वो, और वो ये चाहती हैं कि प्रियंका की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, बेसिकली एक NRI से हो जाए, ताकि प्रियंका को किसी,
यूजुअली हर मदर चाहती है.
यस, हर मदर चाहती है कि बच्चे की शादी NRI बंदे से हो जाए, वो सेटल हो जाए, अमेरिका सेटल हो जाए, अब्रॉड सेटल हो जाए. प्रियंका अपनी माँ को मना किसी चीज के लिए नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि वो अपनी माँ की इकलौती बच्ची है. माँ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, वो शायद एहसान तले या
बात को ओवरकम
नहीं करना चाहती, किसी भी बात को उनको नहीं मना करना चाहती. तो ये उसकी प्रॉब्लम है. वो वरुण को भी बताती है कि मेरी ये बात शाम को तुम समझाओ. हाँ. तो वरुण अपनी तरफ से उनको समझाते हैं, लेकिन शाम जो है वो समझना नहीं चाहते.
Both have their own ego problems. Own
ego problems as well. अब इसके अंदर एक बहुत ही क्यूट कैरेक्टर आता है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ 15 मिनट के लिए कैरेक्टर है. दैट इज कॉल्ड शिफाली. शी इज वन ऑफ द काइंड जो मिस टाइप्स होती हैं. एंड वो शाम के पीछे बहुत घूमती रहती है. एंड वो शाम को बहुत सारे नामों से बुलाती है, कर्ली वर्ली लवी
डवी.
जो शाम को बहुत इरिटेट भी करते हैं, लेकिन अगर जो जो लड़कियां ये पढ़ेंगी वो उनको रियलिस्टिक लगेगा कि ओके मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे बुलाती हूँ. जो बॉयफ्रेंड्स पढ़ेंगे उनको भी लगेगा कि ओके मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे बुलाती है. तो दिस इज द कोर थिंग दैट यस दिस बुक इज
वेरी रियलिस्टिक.
एवरीथिंग एवरी सिचुएशन इन दिस बुक, एवरी पेज इन दिस बुक इज ऑन अ रियलिस्टिक सिचुएशन.
अंकिता, यू ऑल्सो मेंशन कि जो राधिका है उसका हस्बैंड उसके लिए डिजर्विंग नहीं है. व्हाई यू सेड लाइक दैट?
एक्चुअली क्या है इस स्टोरी के अंदर आंचल, राधिका, मैंने जैसे आपको बताया कि उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ में 3 साल का अफेयर था. उसके बाद में जैसे डाइवर्स फैमिली है उसकी, डाइवर्स इन सेंस की उसकी जो अनुज की जो फैमिली है वो बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है. एंड मदर इन लॉ ज्यादा सपोर्ट नहीं करती है. और राधिका जो है वो अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची है, अनुज जो है बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स वो टूर पर रहता है
okay.
तो ही इज एक्चुअली चीटिंग राधिका ऑन टूर्स. ही हैज अ गर्लफ्रेंड.
ओके, ही हैज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर.
यस, एंड राधिका को वो पता नहीं है. राधिका जिस दिन, ये रात की बात है, ये जो वन नाइट एट अ कॉल सेंटर है, उस दिन रात को राधिका को ये पता चलता है कि ओके अनुज की गर्लफ्रेंड है. एंड देन शी डिसाइड्स कि आई हैव डन सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर बॉय एंड सो मच फॉर द पर्टिकुलर बॉयज मदर. मुझे इन रिटर्न क्यों कुछ नहीं मिला. तो देन शी डिसाइड्स दैट शी वॉन्ट्स टू बी हरसेल्फ and she wants to leave him.
She wants a divorce.
She wants a divorce. तो ये situation भी है इसके अंदर.
So there are 6 characters in
yes.
the novel.
Yes.
So which one is your favorite character?
All right. पहले तो मैं ये कहूँगी कि every character is a character of me because एक human being के अंदर ये सारे factors हैं जो इन characters की problems हैं. But I am very 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 much inspired by Vroom. Basically Varun, जो कि speed और thrill और इन सब चीजों से inspired है. तो he is a very realistic person and बहुत he has answers, he has solutions. All you need to do is just listen to yourself and obviously you can do it.
You'll get the answer.
Yes.
Okay. Every question has the answer within yourself.
Yes. किसी और से ये question पूछे उससे पहले अपने आप से question पूछे, आपके पास में answer होगा. क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ये problem है तो कहीं ना कहीं आपके पास में उसका solution है. आप सिर्फ शायद झिझकते हैं वो सोल्यूशन बताने में. आप सोचते हैं कि आपसे बेटर कोई और सोल्यूशन दे सकता है. आपको कैसे पता चलेगा कि आप उससे बेटर हो या वो आपसे बेटर है जब तक आप अपना सोल्यूशन खुद नहीं बताओगे.
Exactly.
तो इस किताब के अंदर यही चीजें बताई गई हैं.
ओके अंकिता, एज यू टेल मी दैट नेम इज वरुण एंड एक्चुअली कॉल हिम व्रूम, आई हैव आल्सो सीन दैट ऑल द कैरेक्टर्स नेम्स हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम वरुण टू व्रूम और फ्रॉम श्याम टू सैम एंड ईशा टू एलाइजा. व्हाई इज द नेम आर सो चेंज्ड इन द नॉवल?
सी, एज द नॉवल सेज दैट इट इज बिकॉज इंडियंस हैव वेरी ट्रिकी नेम्स, राइट? वी हैव वेरी, हमारे जो नाम होते हैं उन सबका कोई ना कोई अर्थ होता है. जैसे आंचल का कोई एक अर्थ होगा, अंकिता का कोई एक अर्थ होगा, वरुण का एक अर्थ होगा. तो ये अर्थों वाला सिस्टम जो है ये अमेरिकन्स को नहीं समझ आता. उनके लिए तो सैम और जैसे एलाइजा वगैरह नाम रखे गए हैं. एलाइजा नाम है, रजीना नाम है, ये सारे नाम उनको रियलिस्टिक लगते हैं. तो उनके लिए प्रोनंसिएशन ऑफ इंडियन नेम्स इज डिफिकल्ट. सो वॉट आई थिंक की एंड वट आई बिलीव इज कि हर कॉल सेंटर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको एक इंग्लिश नाम दिया जाता है सो दैट इट इज ईजियर फॉर दी पीपल हु आर ऑन द फोन कॉल एट दैट टाइम कैन एक्चुअली स्पेल देयर नेम ईजीली. इसीलिए सबके कैरेक्टर्स के नाम चेंज करे गए हैं कि वरुण को एक्चुअली बोलते विक्टर हैं और लेकिन वो स्पीड से रिलेटेड है तो हर कोई उनको व्रूम बुलाता है. ईशा को अलाइजा बुलाते हैं और राधिका को रजीना बुलाते हैं, शाम को सैम बुलाते हैं. ये सिर्फ इसलिए ताकि जो अमेरिकन हैं उनको उनके नाम रियलिस्टिक लगे.
फॉर द कन्वीनियंट ऑफ देयर अमेरिकन क्लाइंट्स दे हैव चेंज्ड देयर नेम. ओके ओके अंकिता, इट्स सीन दैट एवरीबॉडी वांट्स टू सेटल इन अमेरिका एंड व्हाई पीपल थिंक दैट अमेरिका इज मोर सुपीरियर देन इंडिया.
See, I will give a very clear answer. जैसे मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 30 है, उस चैप्टर नंबर 30 के अंदर बहुत क्लियरली इसका आंसर दिया गया है. हमारी आज की जो यूथ है, हम कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने प्रोफेसर्स, कितने वोकेशनल ट्रेनर्स जनरेट कर रहे हैं वो हम जानते हैं. लेकिन हर किसी का कंसेप्ट ये है कि आप अमेरिका सेटल हो जाइए, कनाडा सेटल हो जाइए, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाइए. आपको लगता है कि आपकी कंट्री आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल डिबेट समडे कि क्यों आप फील करते हो कि आपकी कंट्री जो है वो सुपीरियर नहीं है किसी और कंट्री से. मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ आंचल, अगर आप किसी को सुपीरियर प्रूव कराना चाहते हो तो एज अ जेन्युइन पर्सन आप क्या करोगे? आप सिंपल है उसको डराओगे, राइट? और अमेरिका कोई इन्वर्टेड कॉमास में सुपीरियर नहीं है. अमेरिका इज ओनली क्रिएटिंग फियर इन अदर पीपल्स ब्रेन और उस फियर से आपको लगता है कि वो कंट्री जो है वो सुपीरियर है. एज इट इज वेरी क्लियरली रिटन इन दिस बुक कि व्हाई डू यू थिंक दैट अमेरिका इज सुपीरियर टू यू. समबडी सेज कि अमेरिका इज सुपीरियर बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव पावर. Then there is a reply towards it that, well, don't be so high on America. America may have many, many things, but they are not the happiest people on the earth.
True.
By any stretch, they are not the happiest people on the earth. Any country obsessed with war can't be happy.
Can't be superior as well.
Yes. So it is very clearly written that this country is not superior. अगर आप आज देखो 90% ऑफ अमेरिकन्स हैव इंडियन ग्रेजुएट्स रनिंग देयर कंपनीज, How exactly. is this possible? We yeah. have the brains. All they are doing is just creating fear in those brains. That we are superior to you. We have the power. So if somebody tells ki aap jaake America mein bas jao, to mujhe nahi lagta ki wo zaruri hai aapke liye. You can do wonders sitting in India as well.
Yeah, exactly. We can do that also.
Yes.
Ankita, since they are working in a call center, they must be having a boss.
Yes.
So tell me about that character also.
Okay. He is a very disgusting character.
Okay.
He is actually the true, typical, cruel bosses.
Villain of the story?
Yes.
Okay.
Every story should have a villain, right?
Exactly.
So, the character's name is Mr. Bakshi. And he is the villain. And I would like to say just one line sentence which jo uski character ko bilkul display kar dega. A bad boss is like a disease to the soul.
Okay.
Right? If you have one for too long, you get convinced that something is wrong with you. And iska jo character hai Bakshi ka, wo yahi prove karta hai. Wo aap kuch bhi achhi cheez uske samne lekar jaoge, wo kahega ye kya hai? This is nothing.
Okay.
You cannot do anything. He will make you feel so low that at the end of the day you don't want to work at all. Either you want to kill him or you don't want to work.
Okay.
And Bakshi ka character, jaise maine bola, ek true cruel characters hai, real character hai boss ka. To is pe main aapko ek baat batati hu ki ek assignment milta hai, ek web designing ka project milta hai Bakshi ki organization ko. And usme Bakshi ko pata hai kyunki Shyam aur Varun jo hai, jo Vroom hai, they are very good in computers. So what he does is ki inko ye project aage de deta hai. Aur jab project submit hota hai to ye Boston mein submit hona hai. And Boston ke andar promotions jo hai wo honi hai. To Varun ko ya Vroom ko aur Shyam ko ye lagta hai ki agar ye project submit karenge to they will have a brighter chance. But what happens is they confidently build a web design project. और उसके बाद में एक साइट क्रिएट करने के बाद में ये बख्शी को देते हैं कि आप इसको बॉस्टन फॉरवर्ड कर दीजिए, बिकॉज इनको अलाउड नहीं है कि ये डायरेक्टली कोई भी चीज़ बॉस्टन फॉरवर्ड करें. तो इन्हें पता ये चलता है कि बख्शी ने वो अपने नाम से सबमिट किया है. तो इनको ये आता है कि वाई डिड ही डू इट, वाई डिड ही एक्चुअली टिच देम. उनकी मेहनत के ऊपर अपना नाम लिख कर दे देना, सबमिट कर देना. एंड देन बख्शी इज़ फ्लॉन्टिंग दैट आई हैव डन दिस, आई विल बी गेटिंग अ हाउस इन बॉस्टन, आई विल बी गेटिंग अ प्रमोशन इन बॉस्टन. तो एक रिवेंज फीलिंग भी आती है इनके अंदर. तो इस स्टोरी के एंड पार्ट में एक रिवेंज भी होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी स्पाइसी रिवेंज.
Now since you have mentioned about the revenge, तो मैं यही पूछना चाहती थी आपसे next question कि either यही होता है कि हम जब से films में देखते हैं, किसी novel में देखते हैं, या तो हमारा जो negative character होता है या तो वो मर जाता है, या उसको अक्ल ठिकाने आ जाती है, या उससे कोई revenge रहता है, तो इसमें क्या है revenge, इन्होंने कैसे
लिया? काश काश कि इसके अंदर वो villain को मार सकते हैं.
Okay.
काश कि कुछ ऐसा हो सकता तो मैं भी बिल्कुल उसका पार्ट बनती. बट इसके अंदर बहुत क्लियरली उनको बताया जाता है कि अगर आप किसी चीज को गलत होते हुए देख रहे हो तो उसे रोको, नहीं तो आप सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हो. तो बहुत क्लियरली इसके अंदर वो बख्शी को एक उसको फंसाते हैं. जैसे मैंने बताया कि ये छः बंदों की कहानी है, तो छः बंदे एक प्लॉट तैयार करते हैं. उसके अंदर उसको हरास करते हैं बख्शी को, उसको फिजिकली और मेंटली हरास करते हैं. एंड दे डू इट फॉर गुड, बिकॉज उन्हें पता है कि बख्शी जो है वो 100 लोगों और की नौकरियां ख़त्म कर रहा है. तो दे डू इट फॉर गुड, दे वॉन्ट, बिकॉज दी 6 कैरेक्टर्स वॉन्ट टू सेव दी जॉब्स फॉर नेक्स्ट 100 पीपल. सो दे take a revenge from Bakshi, which actually turns out to be profitable to the whole organization.
Okay.
And par aur Bakshi ko bhi uski jo punishment hai wo milti hai. And he is also forced to set things right on his own ends. And jaise maine bataya ki ek cute, ek acha spicy character, ek plot taiyar kiya jata hai. To wo plot में एक लड़की की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है और बख्शी की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाती है, और उसको हरास किया जाता है कि देखो अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो हम ये लीक आउट कर देंगे, बॉस्टन में मेल भेज देंगे. तो एक पूरा कैरेक्टर ऐसे, एक पूरा
इमोशनल अत्याचार हो जाता है.
हाँ बिल्कुल, एक इमोशनल अत्याचार हो जाता है क्योंकि बख्शी अभी तक करता था तो अब इनका टाइम आ गया था. तो ये फुल टुश जो है इमोशनल अत्याचार करते हैं उसके ऊपर, एंड दे टेक अ रिवेंज आउट ऑफ इट. एंड अगर मैं सारा कुछ बता दूंगी तो देयर विल बी लेस ऑफ रीडर्स फॉर दिस बुक. तो आई वांट टू keep something for myself also.
And maintain the suspense.
Yes.
Okay.
तो मैं सबसे request करूंगी, yes, that they should actually read this book.
Okay. Okay. Then why is the book named One Night at the Call Center?
ओके एज आई हैव टोल्ड यू कि ये छह बंदों की स्टोरी है एंड जिस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे कॉल सेंटर के अंदर जॉब्स का बहुत एक हाइप चला हुआ था एंड उस टाइम की जो यूथ थी वो ज्यादातर 12th पास होती थी, कॉलेज कर रहे हैं नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं ग्रेजुएट भी बनी है,
जॉब करने का ही क्रेज होता था.
एक्चुअली वो जॉब करने का क्रेज नहीं, एक शायद इंडिपेंडेंस होती है या एक शायद मनी का फ्लेवर होता है.
Exactly.
वो उन्हें उस टाइम लगा था. तो ये उस सिचुएशन को लेकर ये किताब लिखी गई थी. जैसे बहुत क्लियरली है कि इसका टाइटल जो है वो बहुत क्लियरली बताता है कि वन नाइट एट अ कॉल सेंटर. तो कॉल सेंटर के अंदर छह लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बैठे एक ही जगह हैं, काम एक ही जगह कर रहे हैं, साथ में रहते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपस में बात होती है, तो बात होती है तो आप किसी का भी दुख दर्द जो है उसको सुन लेते हैं. तो इन छह बंदों के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई थी और विद द बैकग्राउंड जो इसमें कॉल सेंटर के अंदर उस पर प्रॉब्लम दिया जा रहा था. प्रॉब्लम ये था कि कॉल सेंटर्स के अंदर जैसे अगर कॉल्स नहीं आती हैं तो आप कॉल सेंटर शट कर देते हैं. तो एक इशू तब इसके अंदर ये उठा था कि कॉल सेंटर जो है वो बंद होने वाला है एंड जो लोग हैं उनकी कटौती करी जाएगी क्योंकि उस टाइम पे कॉल सेंटर में रिसेशन आया था. तो ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप कैसे उस सिचुएशन से डील करते हो, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन से निकालते हो. दिस स्टोरी इज एक्चुअली अराउंड दैट विद द बैकग्राउंड ऑफ दैट.
Tell me something about the lifestyle of the people in the call center. How has the Chetan Bhagat described the lifestyle? How they, you know?
See, as I've told you, I'm keep on repeating the same thing again and again. That the book is realistic. इसके अंदर बिल्कुल वो सारी चीजें बताई गई हैं कि जो call center के अंदर बच्चे होते हैं, youth को पता नहीं है कि money management क्या होता है. वो अपना पैसा बना जो रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उसको डिस्कोस में, पार्टीज में, ड्रग्स पर और अल्कोहल पर.
स्पेंडथ्रिफ्ट.
यस, स्पेंडथ्रिफ्ट एंड बिल्कुल उनकी एज आई टोल्ड यू नो मनी मैनेजमेंट. उनको लगता है पैसा आया है फटाफट, सामने मॉल है जाओ शॉपिंग कर लो, आज पार्टी है यहाँ चले जाओ.
सेविंग
मेंटालिटी नहीं है इनमें एंड वेरी वेरी क्लियरली चेतन भगत ने ये बताया है कि ये लाइफ है एक कॉल सेंटर की और यही लाइफ एंड एक्सेप्ट फॉर राधिका एंड मिलिट्री अंकल, यही लाइफ है बाकियों की भी. ईशा इज अ वेरी क्यूट कैरेक्टर एंड अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर क्योंकि शी इज एक्चुअली वर्किंग इन अ कॉल सेंटर सो दैट शी कैन सेव सम मनी ताकि वो अपना एक पोर्टफोलियो खिंचा सके जिस पोर्टफोलियो को शायद 50,000 या 70,000 रुपए की जरूरत है एंड सो दैट शी कैन एक्चुअली सेंड दैट पोर्टफोलियो एंड मेक सम मनी एंड मेक नेम एंड फेम इन द मार्केट. तो हर कैरेक्टर की कॉल सेंटर के अंदर काम करने का एक रीजन है और ये बहुत क्लियरली इसके अंदर बताया गया है कि यस वट एवर द लाइफ स्टाइल कॉल सेंटर पीपल लिव इट्स बीन डिपेक्टेड दैट वे.
ही हैज डन जस्टिस टू द लाइफ स्टाइल.
यस वेरी मच.
इट्स लाइक हाउ टू इमेजिन लाइक व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्लीपिंग एंड योर डे बिगिंस देन.
यस 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 एब्सोल्युटली राइट कि बिल्कुल ये बताया गया है कि जब आप और मैं सो रहे होते हैं तो वो लोग काम कर रहे होते हैं.
एज उनका डे तब बिगिन होता है.
हाँ, उनकी गुड मॉर्निंग तब होती
है. So what is the benefit of reading this book? Every book gives something to us.
Yes.
So what is this book is giving to you?
See, as I've told you that Chetan Bhagat actually believes in a spiritual message.
Yeah.
I would suggest everybody to read this book because ek to pehla ki it will give you a complete mirror image of what is happening in your life. Every situation jo is kitab ke andar di gayi hai wo aapke aas pas revolve karti hai. आप आंसर्स सीक करते हो, आपको पता है आंसर्स क्या हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो उस चीज़ के. इस बुक का जो चैप्टर नंबर 30 है, उस चैप्टर नंबर 30 के अंदर बिल्कुल क्लियरली दिए गए हैं वो आंसर्स कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए. और मैसेज भी बहुत क्लियर है क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल है बहुत सिंपल है. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, डे टू डे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करे गए हैं. तो इट इज़ ईजी फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू रीड.
So any particular thing that you like about the book, because it sounds so interesting book, so I just want to know any particular thing, any particular incidents, any particular character or message that you like about the book.
Yes Anshul, isme actually agar aap bahut dhyan se isko read karenge aapko char mantra milenge success ke, jo aajkal har banda chahta hai ki usko wo char mantra mil jaye.
Because everybody wants to be successful.
Yes, everybody wants to be successful. और बहुत clearly इस book के अंदर वो चार mantras दिए गए हैं. पहला मंत्रा जो था, अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाएगा तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं. जैसे मैंने कहा, पहला दो जो इन्होंने एक केक के फॉर्म में दिया है. The mantra is in a form of cake.
Okay.
So आप इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? right?
It's a recipe for a successful person.
Yes, the recipe. And very obvious things that we already know, but we are neglecting them. Pehla hai intelligence.
Okay.
You have to have intelligence. एंड इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है कि आपको किताबों से ही आएगी. यू आर इंटेलिजेंट यू बिकॉज यू आर अ ह्यूमन सो यू आर इंटेलिजेंट राइट. सेकेंड है इमेजिनेशन बिकॉज यू आर अ ह्यूमन यू हैव इमेजिनेशन. बिल्कुल सही चीजें हैं दो, हर कोई जानता है ये. तीसरी चीज जिसको हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस राइट. और चौथी चीज जिसको हम सोच के भी नहीं सोचते, दैट इज फेलियर. Until and unless यू फेल इन लाइफ यू विल नेवर रियलाइज हाउ सक्सेस tastes.
Exactly.
अगर आपको ये नहीं पता कि आप गिरने वाले हो या गिरोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही से चल सकते हो? तो ये चार मंत्र है इस बुक के अंदर.
तो इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेलियर, इन चार चीजों को मिक्स कर दो तो ये रेसिपी है हमारी,
रेसिपी है
सक्सेसफुल पर्सन की.
यस, ये एक रेसिपी है कि हाउ कैन यू बी अ सक्सेसफुल पर्सन.
देयर इज आल्सो वन मूवी दैट वाज रिलीज्ड नेम्ड हेलो व्हिच वाज बेस्ड ऑन दिस नॉवेल वन आई एट द कॉल सेंटर. सो डू यू थिंक दैट इट इज अ जस्टिफिकेशन टू द वन आई एट द कॉल सेंटर बिकॉज द नॉवेल इज वेरी हिट एंड द मूवी वॉज वेरी वेरी फ्लॉप.
आई थिंक जब ये मूवी रिलीज हुई थी I had the curiosity level and I wanted to see the movie, whether the movie has done the justification to the book. But I was very very depressed ki jo ek hype aur ek aura aur ek enthusiasm is book ne create kiya tha, shayad wo wahi cheez wo film nahi kar payi. Because dekhiye kya hota hai ki ya to ye ho ki aap pehle ek movie dekh le fir kitab padhe. देन यू विल से कि हाँ आपको लगता है कि मूवी ने जस्टिफिकेशन नहीं करी किताब के साथ में या किताब ने जस्टिफिकेशन नहीं करी मूवी के साथ में. बट जिन्होंने पहले ये किताब पढ़ी है उन्हें पता है कि क्या कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे करे गए थे वहाँ पे उन्होंने जस्टिफिकेशन किया. मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ हो पाई उनसे. दे शुड एक्चुअली हैव नॉट डन दैट बिकॉज लोगों के अंदर ना आजकल आंचल एक चीज़ हम देखते हैं कि 90% लोग जो हैं वो या तो मूवी देखना पसंद करेंगे या बुक रिव्यू इंटरनेट पे रीड करना पसंद करेंगे, किताब कोई नहीं पढ़ना चाहता.
एग्जैक्टली.
तो अगर वो चीज़ नहीं हुई होती तो आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने किताब पढ़ी होती.
ओके हाँ.
तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक जस्टिफिकेशन किया था.
चेतन भगत की बुक जो एक्चुअली में हिट हुई है,
इट वाज यस एंड इट आई वोंट से कि चेतन भगत की बुक जो भी हिट हुई है अभी तक वो कभी भी वॉज बन सकती हैं, वो हमेशा इज रहेंगी. एंड अगर उनकी किताबों के साथ में ना करा जाए खिलवाड़ तो ज़्यादा रहेगा गुड. क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो पोर्ट्रे करना चाहते हैं स्क्रीन पर वो हम जस्टिफाई कर पाए.
ओके, सो दिस बुक साउंड्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. सो लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू इज दैट व्हाई विल यू सजेस्ट अदर पीपल टू गो फॉर दिस बुक एंड रीड दिस बुक.
सी, मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर एक रेसिपी है कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं. इसके अंदर आपको ये भी मिलेगा कि आपके आसपास में इतनी सिचुएशंस है, आप इन सिचुएशंस से कैसे डील करो, आपकी इनर सोल क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो, ये इस बुक के अंदर है. इस बुक के अंदर जैसे मैंने ये भी बताया कि हर किताब के अंदर एक स्पिरिचुअल मैसेज उनका रहता है. एक वो स्पिरिचुअल मैसेज भी है. इसके अंदर एक पॉइंट और भी है क्योंकि ये बहुत कोई हाई फाई इंग्लिश में नहीं लिखी गई है, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी गई है. एवरीबडी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैसेज दैट ही इज ट्राइंग टू सेंड आउट. तो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं जो आपको इस किताब को उठाने में मजबूर कर देंगे कि आप इस किताब को उठाएं और आप इस किताब को पढ़ें एंड रिलेटेड टू योरसेल्फ.
ओके,
इफ़ यू वांट आंसर्स इन लाइफ आई वोंट से कि हाँ ये बहुत स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ बुक है, बट ये यूथ की बुक है और आपके आसपास की सारी चीज़ें हैं जो होती हैं लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो और आंसर्स भी आप ही के पास में है. अगर आप एक उस आंसर्स का क्लियर पिक्चर चाहते हो, किसी को आप चाहते हो,
आंसर लाइज विद इन योरसेल्फ.
यस, और आप चाहते हो कि कोई आपको लिख के दे दे वो आंसर्स, तो वो ये किताब में लिख के दिया हुआ है. तो काइंडली बाय दिस बुक, वन नाइट एट अ कॉल सेंटर बाय चेतन भगत, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड जस्ट गो फॉर इट.
आई थिंक इफ यू नीड द आंसर्स, दिस बुक इज अ गिफ्ट दैट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन.
And I would say this book is a gift that you can recommend a friend also.
Okay, so that right? he can find the answers to his questions, to his queries.
Yes, because जहाँ आपको मुसीबत है तो बट ऑब्वियसली कि आपके दोस्तों
को मुसीबत होगी,
तो आप पढ़ें और उनको भी पढ़ाएं, उनको भी बताएं ताकि ये किताब जो है एक दोस्त से दूसरे दोस्त से तीसरे दोस्त तक पहुंचे.
Okay. अंकिता, थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियो एंड टेलिंग सो मच रिगार्डिंग दिस बुक वन एट द कॉल सेंटर बाय चेतन भगत एंड थैंक्स फॉर कमिंग.
थैंक यू सो मच आंसर.
थैंक यू. ऑलराइट. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ. फील गुड, फील लाइफ.